हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रानी माँ ने हल्का सा मुस्कुराते हुए रीत परी को एक बार फिर देखा। कहीं ना कहीं वो रीत परी का उत्साह देखकर हैरान थीं। उन्हें इस बात से भी कुछ खुशी हो रही थी कि उसे थोड़ी बहुत खुशी तो मिल ही रही थी। जल्दी ही रानी माँ ने रीत परी पर मंत्र का उच्चारण कर दिया। देखते ही देखते रीत परी गायब होकर सीधा पृथ्वीलोक जाने लगी। रीत परी के गायब होने के बाद रानी परी को परीलोक में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो समझ गई थी कि वो राक्षस फिर जाग चुका है, इसलिए जल्दी से उस राक्षस के कक्ष की ओर जाने लगी। वो राक्षस रानी परी की ओर देखकर बोला, बस कुछ दिन और, कुछ दिन और, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उस राक्षस ने परीलोक में तरह तरह की तबाही मचा रखी थी। जैसे जैसे उसके जागने का समय करीब आ रहा था, वैसे वैसे उसकी शक्तियां जागृत होती जा रही थीं। इसलिए वो अपने शरीर से किसी न किसी को अपने काबू में कर लेता था और वश में करके किसी भी परी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। धीरे धीरे उसने कई सहायकों को अपने वश में करके कई परियों के साथ दुष्कर्म करवाए थे। रानी माँ को ये खबर मिल चुकी थी। अब उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस मुसीबत से कैसे बचें। इसके लिए उन्होंने अपने गुरु का आवाहन भी किया था, लेकिन अभी तक उनके गुरु हाजिर नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं रानी माँ पूरी तरह परेशान हो चुकी थी, लेकिन वे अपनी बेटी तारा को ये नहीं बताना चाहती थी कि परीलोक का ये मूर्छित राक्षस अपनी शक्तियों का प्रयोग करके किसी न किसी को अपने वश में कर लेता था और किसी भी सहायक को वश में करके किसी भी परी के साथ संबंध बना रहा था। हालांकि रानी परी अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए उस प्रताड़ित परी की बुरी यादें हर बार मिटा रही थीं, जिसके साथ वो राक्षस किसी सहायक को वश में करके संबंध बना रहा था, लेकिन अब ये रोज की बात हो गई थी। हर रोज वो राक्षस किसी न किसी सहायक को अपने वश में कर लेता था और वो सहायक उसके वश में आकर किसी भी परी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लग जाता था। ये देखकर वो राक्षस बहुत खुश होता और जोर जोर से हंसने लगता था। अब जैसे ही एक बार फिर रानी माँ को उस राक्षस की आवाज़ सुनाई दी, वे भी जल्दी से उसकी दिशा में जाने लगीं। वे देखना चाहती थीं कि अब उस राक्षस ने किसे अपने वश में किया है। जैसे ही वे वहां पहुंची, वे देखकर पूरी तरह हैरान हो गई। उस कक्ष का जो द्वारपाल था, इस बार उस राक्षस ने उसे ही अपना निशाना बनाया था। वो द्वारपाल सीधा एक परी के पास पहुंचा और एक परी को बालों से घसीटते हुए वो राक्षस के कक्ष में ले आया। रानी परी ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह नाकाम रहीं, क्योंकि उस राक्षस की शक्तियों के आगे सबकी शक्तियां फीकी थीं और वो द्वारपाल तब तक नहीं रुकने वाला था जब तक कि वो उस परी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना लेता। वो इस तरह से वश में करता था कि कोई भी सहायक, यानी परीलोक में काम करने वाला कर्मचारी हो या परीलोक में रहने वाला कोई भी परी मानव हो, वो पूरी तरह से उस राक्षस के वश में होकर किसी भी परी को खींचकर उसी कक्ष में ले आता था जिस कक्ष में वो राक्षस हुआ करता था, और फिर उस राक्षस के सामने उसके साथ इस तरह से संबंध बनाया करता था जिस तरह से वो राक्षस तारा परी के साथ संबंध बनाता था। पूरी तरह से उसे निर्वस्त्र करने के बाद पहले उसे काफ़ी देर तक नचाता था और फिर नचाने के बाद उसके साथ अपनी पूरी मनमानी करता था, और जब जब परी की चीखें उस राक्षस के कानों में गूंजती थीं तो उसे बहुत मज़ा आता था। ये सब परीलोक में तब से ही चल रहा था जब से तारा परी एक बार फिर पृथ्वीलोक गई थी। तारा परी के सामने वो राक्षस केवल बोलने लगा था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था, जिसके बारे में तारा परी को एहसास नहीं था। हालांकि वो अपनी माँ की आंखों में उदासी देख चुकी थी, लेकिन उस वक्त वो खुद अमन को लेकर परेशान थी, तो इस बारे में वो ज़्यादा नहीं सोच पाई थी। जल्दी ही रेत परी तारा परी के सामने मौजूद थी। जैसे ही तारा परी ने रीत परी को देखा, उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और कहा, तुम्हारा स्वागत है रीत परी पृथ्वीलोक पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस काम के लिए तुम आई हो, तुम उस काम को बड़ी ईमानदारी से करोगी। तभी रीत परी चहित पे हुए बोली, रानी तारा परी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना है, और अब मैं पूरा पृथ्वीलोक देखना चाहती हूँ और उसके बाद आपका काम करना चाहती हूँ। जैसे ही रीत परी ने वहां आते ही इतने उत्साह में पूरा पृथ्वीलोक देखने की बात की, तारा उसे मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए एक छोटी सी चिड़िया बना देती हूँ। उसके बाद तुम चिड़िया बनकर पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर सकती हो, जहाँ तुम देखना चाहो देख सकती हो, लेकिन उसके बाद तुम्हें जल्द से जल्द लौट कर आना होगा और फिर जादुई माला पहनकर इसी घर में रहने वाले अमित का तुम्हें पहरा रखना होगा। जैसे ही तारा परी ने रेत परी को काम दिया, रेत परी मुस्कुराने लगी और बोली, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, और वैसे भी मैं ये भ्रमण तो केवल आज रात को ही पूरा कर लूंगी, उसके बाद मैं आपका दिया हुआ काम करूंगी, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तारा परी कि आपने मुझे पृथ्वीलोक को देखने की इजाज़त दे दी। तब तारा उसकी ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराई। वो अभी उसे कुछ और कहना चाहती थी, तभी उसे एहसास हुआ कि मानो अमन आ रहा है। तभी तारा ने जल्दी से रीत परी को गायब होने को कहा और जल्दी ही अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए उसके ऊपर फूंक मार दी। देखते ही देखते रीत परी एक चिड़िया बनकर तारा के कमरे से खिड़की से निकल गई। वहीं अमन करिश्मा जी के पास से जल्दी ही लौट आया। करिश्मा जी ने अमन से कह दिया कि उसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। अपनी माँ की बात सुनकर अमन बहुत खुश हो गया और जल्दी ही तारा परी के पास आ गया। तारा ने जो अमन को वादा किया था कि अमन के जाने के बाद वो अमन के लिए तैयार होगी, अब तारा ने जल्दी ही एक सफ़ेद रंग का बड़ा ही खूबसूरत सा मोती जड़ाव लहंगा पहना था, जिसमें वो बड़ी प्यारी लग रही थी। तारा को इस तरह से खूबसूरत देखकर अमन की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगा और बोला, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लगोगी, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसा कहकर उसने तारा के हाथों को चूमा। तारा अमन के इस तरह से प्यार करने पर थोड़ी सी सहर उठी और बोली, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके लिए तैयार होना चाहती हूँ, पहले आपको ऐसा क्यों लगने लगा है कि मैं आपसे दूरी बना रही हूँ? ये आपकी गलत फहमी है, मैं आपसे कोई दूरी नहीं बना रही हूँ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ। ऐसा कहकर तारा मुस्कुराकर अमन की ओर देखी। तब अमन थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसने तारा को अपनी गोद में उठा लिया, खुद उसे गोद में लेकर गोल गोल घूमने लगा। उस वक्त अमन पूरा प्यार तारा पर न्योछावर कर देना चाहता था, वो एक पल के लिए भी तारा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो बोला, आज तुम्हें इस तरह से तैयार देखकर मुझे ऐसा लगने लगा है मानो कि आज हमारी जिंदगी की पहली रात हो, जिस तरह से हमारी पहली सुहाग रात हुई थी।
जैसे ही अमन ने उस रात का जिक्र किया, तारा हैरान हो गई और उसे जल्दी ही वो रात भी याद आ गई जब उसने वहां पर एक सफ़ेद रंग का करिश्मा जी के दिए हुए कपड़े पहने थे, जिसमें वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, जो कि जिस वक्त वो जिन्नातों की दुनिया में गई थी। तभी तारा को इस तरह से मन ही मन मुस्कुराते हुए देखकर अमन भी मुस्कुराने लगा और उसने सीधा तारा को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके पास उसके बराबर में लेटकर उसका हाथ थामकर उसे चूमते हुए बोला, तुम जानती हो तारा, पता नहीं क्या हो गया है, पर मेरा दिल करता है कि बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखता रहूं, तुम्हें प्यार करता रहूं, तुम्हें चूमता रहूं, एक मिनट के लिए भी तुम्हें अकेला न छोड़ूं। मैं प्यार तो तुम्हें पहले भी बहुत किया करता था, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारे बिना मैं सांस तक नहीं ले पा रहा हूँ। अमन की ये बातें सुनकर तारा ने सोचा कि उसे भी अभी इसी तरह की बातें करनी चाहिए। अगर उसने इस तरह की बातें नहीं की तो अमन चिढ़ सकता था, क्योंकि इस वक्त जो काली शक्ति, कुछ भी काला साया उस पर हावी हो रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ प्यार मांग रहा था। उसे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए था, इसीलिए तारा ने भी जल्दी से अमन का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि मैं आपको प्यार नहीं करती? मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और आप देखिएगा, हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा, वो हम दोनों के प्यार की निशानी होगा और हम दोनों मिलकर उसे प्यार करेंगे। जैसे ही तारा ने ऐसा कहकर अमन का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखा, अचानक से अमन के जिस्म में पूरी तरह से झुनझुनी सी पैदा हो गई और एकदम से उसके शरीर में करंट लगा और वो उठ बैठा और तारा की ओर देखकर बोला, तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? क्या हो रहा है यहाँ पर? जैसे ही अचानक से अमन ने ये कहा, तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और फिर अगले ही पल उसे सब कुछ समझ में आ चुका था कि जिसके वश में अमन था, जिनके वंशज ने, जो कि इस वक्त तारा के पेट में था, उसने उसके वश से एक ही झटके में बाहर निकाल दिया था। अब तो तारा अपने होने वाले बच्चों की शक्तियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, और साथ ही साथ उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उसके बच्चे के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं कि पेट के अंदर से जब वो इतना सारा जादू कर सकता है तो वो दुनिया में आने के बाद क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं तारा को अब अपने बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होने लगी थी। और तभी अमन अगले ही पल तारा के पास से उठ बैठा और बोला, तब तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं? तुम वैसे नॉर्मल कपड़े की पहनती हो तब भी मुझे सुंदर लगती हो, तुम्हें मुझे दिखाने के लिए इस तरह से सुंदर कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा उसकी ओर देखने लगी और मन ही मन में सोचने लगी कि अमन का कौन सा साइड अच्छा है, वो फ्लर्टी वाला साइड या फिर ये खड़ूस वाला साइड। तभी तारा ने अमन की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ है आपको? अभी तो आप मुझे इतना सारा प्यार कर रहे थे, फिर अचानक से आप इस तरह से उठ बैठे हो जैसे कि आपने मुझे पहली बार देखा हो। तभी अमन हैरानी से तारा की ओर देखकर बोला, व्हाट डू यू मीन, मैं तुम्हें प्यार कर रहा था? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसमें क्या कुछ कहने की बात है? और अपना प्यार जाहिर करने के लिए क्या मुझे बार बार अपने मुंह से बोलना जरूरी है क्या? और क्या तुम्हें मेरा प्यार मेरी आंखों में दिखाई नहीं देता? और ये सब चीप हरकतें मुझसे नहीं होती हैं, तुम अच्छी तरह से जानती हो। और ये क्या पहन रखा है तुमने? रात का समय है, सोने का टाइम है, इस वक्त इतने भारी कपड़े पहनकर सोओगी तो बच्चे पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे पर किसी तरह का कोई असर हो। अब जाइए और फटाफट कपड़े चेंज करके आइए। जैसे ही अमन ने ये कहा, तारा मुस्कुराते हुए जल्दी ही कपड़े चेंज करने के लिए चली गई।